नमस्कार, मैं हूं सिकता देव और आप देख रहे हैं खबरों की खबर। और शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। ज्वाइंट सीएसआईआर यूजीसी नेट स्थगित कर दिया गया है। 25 से 27 जून तक होनी थी ये परीक्षा, नई तारीखों का ऐलान जल्द किया जाएगा। इमरजेंसी वजहों से परीक्षा स्थगित की गई है। एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ही आयोजित करती रही है ये परीक्षा, और प्रेस बयान जारी कर एनटीए ने इसकी जानकारी दी है। और प्रशांत हैं इस वक्त हमारे साथ, चलते हैं सीधे हमारे सहयोगी के पास। प्रशांत, इस वक्त आप छात्रों को और क्या बता सकते हैं, क्या जानकारी मिल पाई है?
नहीं देखिए, अब से कुछ दिन पहले जो यूजीसी नेट की परीक्षा थी उसी के समकक्ष ये परीक्षा होती है, यूजीसी सीएसआर नेट की परीक्षा, जो विज्ञान से जुड़े जो विषय हैं, साइंस जो विषय हैं, उसमें अगर लेक्चरशिप की पात्रता होती है या पीएचडी में जो एडमिशन होता है उसके लिए ये परीक्षा आयोजित होती है। और अभी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से कुछ देर पहले एक सूचना दी गई है, और केवल अभी ये बताया गया है कि 25 से 27 जून तक जो ये परीक्षा होने वाली थी वो फिलहाल स्थगित कर दी गई है। कारण इसमें दो बताए गए हैं। पहला कारण बताया गया है कि अनअवॉइडेबल रीजंस और अपरिहार्य कारण, और दूसरा लॉजिस्टिक इशू, लॉजिस्टिक्स की वजह से ये इन दोनों कारणों से ये परीक्षा रद्द की गई है। केवल छात्रों से ये कहा गया है कि जल्द ही जो अगली तारीख है इस परीक्षा की वो जल्द ही वेबसाइट पर, एनटीए की वेबसाइट पर छात्रों को उसके जरिए सूचित किया जाएगा। और छात्रों से ये अनुरोध किया गया है कि अगर कोई भी दिक्कत हो तो एनटीए ने एक हेल्पलाइन जारी किया है, उस पर छात्र संपर्क कर सकते हैं। ये हेल्पलाइन नंबर अगर मैं बता सकूं, 011-4075-9000 या 011-6922-7700। तो बस अभी इतनी ही जानकारी दी गई है कि ये परीक्षा स्थगित कर दी गई है। कारण अपरिहार्य कारणों की वजह से ये स्थगित की गई है, उसके आगे अभी एनटीए की तरफ से कुछ भी नहीं बताया गया, अभी बाकी सूचना का इंतजार है।
जी प्रशांत, अगर वो फोन नंबर आप दोबारा हमारे दर्शकों की सहूलियत के लिए रिपीट कर सकें जिनको इस नए फैसले के बारे में जानकारी हासिल करनी है।
जी बिल्कुल, देखिए वेबसाइट पे भी जा सकते हैं छात्र, उसके अलावा अगर उनको फोन के जरिए जानकारी लेनी हो तो एनटीए ने एक हेल्प डेस्क बनाया है और उसका नंबर है 011-4075-9000 और दूसरा नंबर है 011-6922-7700। तो दो नंबर भी जारी किए हैं एनटीए ने, हेल्प डेस्क बनाया गया है, इन दो नंबरों पर कॉल करके भी छात्र ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है एनटीए के पास अभी इससे ज़्यादा जानकारी देने के लिए है भी नहीं सकता, और इसके बाद जो इसके और क्या क्या कारण हैं, इसमें और क्या जानकारी मिल सकती है, हम कोशिश कर रहे हैं कि और ज्यादा जानकारी लेकर अपने दर्शकों तक पहुंचाएं।
आप नजर रखें, हम लौटेंगे आपके पास प्रशांत। इस वक्त की जो बड़ी खबर जो प्रशांत बता रहे थे, ज्वाइंट सीएसआईआर यूजीसी नेट परीक्षा स्थगित कर दी गई है। 25 से 27 जून तक ये परीक्षा होनी थी, नए तारीखों का ऐलान जल्द होगा। कुछ प्रतिक्रियाएं अब लेते हैं। लतिका गुप्ता शिक्षाविद हमारे साथ जुड़ रही है। लतिका जी, ये जो फैसला आया है इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया।
हाँ, मैं बहुत ही खुश हूँ कि ये इतनी जल्दी नहीं करवाई जा रही है दूसरी बार जो परीक्षा होगी, क्योंकि ये बहुत ही पेचीदा मामला हो गया है। देखिए, जो विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे थे और उन्होंने दिल्ली का या जहाँ भी पढ़ाई कर रहे थे वहाँ की जगह भरी और वहीं से परीक्षा दी, लेकिन अब वो छुट्टियों में घर चले गए, तो अब वो सिर्फ एग्जाम के लिए, परीक्षा के लिए वापस लौट के आए, इतना बड़ा बड़ा खर्चा करें। आजकल टिकट भी इतनी महंगी हो गई है, एकदम से वो नहीं जा सकते, आ सकते, और इतनी बड़ी परीक्षा है, जो मन में संशय ज्यादा हुआ है उसके बाद इसका स्थगित होना तो ठीक है, अच्छी बात है, पूरी तैयारी की जानी चाहिए। लेकिन और भी गहराई से सोचें तो ये एक नैतिक मसला भी है, और विद्यार्थियों ने बहुत खर्चा किया है। मेरे कई विद्यार्थियों को मैं खुद जानती हूँ कि अपनी व्यक्तिगत राशि खर्च होती है इससे। मुझे लगता है कि एनटीए को सबका पैसा लौटाना चाहिए और दूसरे राउंड में फ्री में, ये मुफ्त में होनी चाहिए अब ये परीक्षा। गलती कहीं और पे हो उसके लिए विद्यार्थी क्यों भुगते हैं? तो उसका बदलना तो जरूरी, लेकिन उसके बाद ये भी है कि फिर विश्वविद्यालय खुल जाएंगे, कक्षाएं शुरू हो जाएंगी, तो जाहिर है कि उसके बीच के सत्र में अगर ये होता है तो फिर वो नुकसान होगा, और अगर जल्दी नहीं करते हैं तो भी दुविधा है, क्योंकि इसके साथ जो पीएचडी का एडमिशन जुड़ गया है वो अब डिले होगा
जी, तो इंतजार करना होगा अगले फैसले का। शुक्रिया इस प्रतिक्रिया के लिए लतिका गुप्ता आपका। और अब हमारी खास खबर, नीट परीक्षा सवालों में घिर चुकी है, बिहार में जांच हो रही है और कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं, वहीं कई नए नाम सामने आ रहे हैं, इनमें वो नाम भी है जो यूपी के सिपाही परीक्षा पेपर लीक में आरोपी हैं। बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर क्या कोई बहुत बड़ा रैकेट है जो छात्रों के जीवन से खिलवाड़ कर रहा है। बिहार पुलिस सूत्रों के हवाले से आरोपियों पर कई बड़ी जानकारियां सामने आ रही हैं।
चौबीस लाख छात्रों के भविष्य का सवाल, वो परीक्षा जिसे लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बड़े बड़े दावे कर रही थी, वो सब हवा होते दिख रहे हैं। एक देश एक परीक्षा सवालों में घिर चुका है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी शुरू में तो गलती मानने को ही तैयार नहीं हुई, बाद में मानी भी तो बस ग्रेस मार्क्स वालों के परीक्षा की, जबकि परीक्षा वाले दिन से ही पटना में नीट परीक्षा को लेकर जांच शुरू हो गई। इस शख्स को ध्यान से देख लीजिए, ये मास्टरमाइंड हो सकता है कथित पेपर लीक का। इसका नाम है रवि अत्री, पेपर लीक के आरोपों में जेल में बंद है। नीट के कथित पेपर लीक में इसका नाम सामने आ रहा है। बिहार में पुलिस सूत्रों के हवाले से अहम जानकारियां सामने आई हैं। पेपर लीक में रवि अत्री गैंग का नाम सामने आया। रवि अत्री मेरठ की जेल में बंद है। पटना नालंदा बॉर्डर से पेपर लीक होने के क्लू मिले। परीक्षा के एक दिन पहले सॉल्वर गैंग के पास प्रश्न पत्र आ गया था। रांची के एक बड़े मेडिकल कॉलेज के 10 के करीब स्टूडेंट ने प्रश्न पत्र को हल किया, फिर उसे पेपर लीक करने वाले लोगों ने पटना में व्हाट्सएप के जरिए अमित आनंद और नीतीश कुमार तक पहुंचाया। इसके बाद अमित आनंद और नीतीश कुमार ने अभ्यर्थी को बुलाकर प्रश्न पत्र और आंसर देकर उसे रटवाकर अगले दिन सेंटर पर पहुंचाया, मगर इसकी जानकारी पटना पुलिस को लग गई और ये सभी गिरफ्तार कर लिए गए। रवि अत्री को लेकर जो जानकारी है वो भी हैरान करने वाली है। एमबीबीएस का ड्रॉप आउट स्टूडेंट है रवि अत्री। 2007 में मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए रवि अत्री कोटा गया था। कोटा में सॉल्वर गैंग के संपर्क में आ गया और फिर सॉल्वर बन गया। पढ़ाई पूरी होने से पहले ही पुलिस ने इसे पेपर लीक मामले में गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस सूत्रों का यह भी कहना है कि रवि अत्री कई प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक करवा चुका है। इसने यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा का पेपर भी लीक करवाया था। स्टेट बैंक स्टेनो परीक्षा भी लीक करवाई थी। 2012 नीट पीजी परीक्षा के पेपर लीक करवाने के आरोप रवि अत्री पर है। इसके दो खास गुर्गे हैं, एक का नाम है अतुल वत्स और दूसरा संजीव मुखिया। अतुल जहानाबाद का मूल निवासी है जबकि संजीव नालंदा का रहने वाला है। अतुल का नाम रवि अत्री ने यूपी पुलिस की कांस्टेबल परीक्षा पेपर लीक मामले में लिया था जबकि संजीव फरार चल रहा है।
पुलिस सूत्रों से मिली अहम जानकारी के मुताबिक नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में रवि अत्री गैंग का नाम भी सामने आ रहा है। रवि अत्री फिलहाल पेपर लीक के ही एक दूसरे मामले में मेरठ जेल में बंद है। पहले भी इस गैंग का नाम पेपर लीक जैसे मामले में सामने आता रहा है। इसमें उत्तर प्रदेश में हुआ पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा भी शामिल है। बिहार में भी ये गैंग अपने गुर्गों की सहायता से पेपर लीक जैसे कारनामों को अंजाम देता आया है।
रवि अत्री जेल में है और पुलिस सूत्रों का कहना है कि उसने नीट का पेपर लीक करवा दिया। कितना बड़ा हो सकता है उसका रैकेट इससे ही पता चलता है। वो जेल में भी पेपर लीक मामले में ही है। बावजूद इसके वो देश में मेडिकल परीक्षा जिसे लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इतने दावे किए कि ऐसा लगा कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन पुलिस सूत्रों की माने तो उसने उसके पेपर भी लीक करवा दिए। बावजूद इसके इस पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कुछ भी नहीं कह रही है। ये तक आरोप लगे हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर कि बिहार में जो जांच चल रही है उसमें सहयोग तक करने को तैयार नहीं, जबकि बिहार में इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट यानी आर्थिक अपराध इकाई जांच कर रही है। जांच पर जो पुलिस सूत्रों से जानकारियां सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट यानी आर्थिक अपराध इकाई के निशाने पर दो सेटर अतुल वत्स और अंशुल सिंह आए। ये दोनों वैशाली के रहने वाले बताए जा रहे हैं। जांच में इन दोनों के नाम मुख्य रूप से सामने आए। इन दोनों की शह पर ही अमित आनंद और नीतीश कुमार बिहार में प्रतियोगिता परीक्षा में सेटर का काम किया करते थे। बहुत सारे नाम लगातार सामने आ रहे हैं। जाहिर है जांच चल रही है तो ये होगा ही, लेकिन सबसे जरूरी है कि इस मामले को गंभीरता से लिया जाए। नीट परीक्षा मामले की पूरे देश में जांच करवाई जाए, जिससे ये पता चल सके कि क्या वाकई पेपर लीक गैंग इतना मजबूत है कि वो पूरे सिस्टम को फेल कर परीक्षाओं के पेपर लीक करवा लेता है और जिसकी कीमत लाखों छात्रों को पिछले कई सालों से चुकानी पड़ रही है।
पुलिस सूत्रों ने यह भी बताया कि पेपर लीक का सुराग पटना नालंदा बॉर्डर पर भी मिल सकता है। दरअसल परीक्षा के एक दिन पहले ही प्रश्न पत्र सॉल्वर गैंग के हाथ लग गया। उसके बाद रांची के एक बड़े मेडिकल कॉलेज के 10 छात्रों ने प्रश्न पत्र हल किया और उसके बाद इसे व्हाट्सएप के जरिए नीतीश कुमार और अमित आनंद तक पहुंचा दिया गया। उसके बाद नीतीश कुमार और अमित आनंद ने अगले दिन अभ्यर्थी को पटना बुलाकर प्रश्न पत्र और उत्तर रटवाया और उसे अगले दिन सेंटर तक पहुंचा दिया। लेकिन इसके पहले ही पुलिस को इसकी भनक लग गई और इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया।
बिहार की राजनीति में दो दिन से नीट परीक्षा के पेपर लीक के एक मास्टरमाइंड सिकंदर यादवेंदु को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। यादवेंदु को पटना पुलिस ने पिछले महीने की 5 तारीख को गिरफ्तार किया था। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के पीए प्रीतम यादव से यादवेंदु के पुराने संबंध बताए जा रहे हैं।
पटना पुलिस की गिरफ्त में ये सभी नीट परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक मामले में आरोपी हैं, जिसमें बिहार सरकार के नगर विकास विभाग में इंजीनियर सिकंदर यादवेंदु भी शामिल हैं। अब निलंबित यादवेंदु ने बिहार की राजनीति में बवाल खड़ा कर दिया है, क्योंकि उसने पिछले महीने अपने साले संजीव कुमार के बेटे अनुराग यादव के लिए बिहार सरकार के पथ निर्माण विभाग के इस गेस्ट हाउस को बुक करवाया, जिसमें उसकी मदद कथित रूप से तेजस्वी यादव के पीए प्रीतम यादव ने की थी। बीजेपी ने इस मुद्दे पर तेजस्वी यादव को घेरा है। हालांकि तेजस्वी यादव का कहना है कि सारी जांच एजेंसियां सरकार के पास है, वो प्रीतम यादव को बुलाकर पूछताछ कर ले।
हम लोगों ने सब लोगों ने मिलकर के निर्णय लिए हैं कि बिहार के अंदर ये माफिया राज को खत्म करना, लॉ एंड ऑर्डर को बहाल करना। आज इसके माध्यम से जो हमारे साइट पर, खनन के साइट पर हत्याएं होती है, गोलियों की बारिश होती है, अवैध खनन के लिए गैंगवार लड़ाई होती है, वो सब भी कैद होंगे और दिखाई पड़ेंगे।
जहां भी बीजेपी शासित राज्य है, चाहे बिहार हो, गुजरात हो या हरियाणा हो, इन तीनों जगह जो है पेपर लीक हुआ है, तो हम लोग ही नहीं बल्कि पूरा इंडिया अलायंस जो है इस मुद्दे पर एक साथ है। और हम लोग चाहते हैं कि जो नीट का पेपर जो लीक हुआ है, इसको रद्द किया जाए अविलंब।
पटना पुलिस के गिरफ्त में आने के बाद सिकंदर यादवेंदु ने स्वीकार किया था कि अमित आनंद और नीतीश नाम के शख्स के संपर्क में आने के बाद उसके आश्वासन के बाद 4 छात्रों का इंतजाम किया था और उसके बदले में 30-30 लाख देने का वादा किया था। सिकंदर को लेकर पुलिस ने और भी जानकारियां भी जुटाई हैं। पुलिस के मुताबिक सिकंदर रोहतास नगर परिषद में करीब 3 करोड़ के एलईडी घोटाले का मुख्य आरोपी है और उसके खिलाफ चार्जशीट हो चुकी है। बिहार सरकार में 2012 में नौकरी में आने से पहले वो रांची में ठेकेदारी करता था। सिकंदर की बेटी भी डॉक्टर है और दामाद भी। फिलहाल पुलिस इस पर सबूत जुटा रही है कि उसने बेटी को भी सेटिंग कर पास तो नहीं कराया। सबसे मजेदार है कि रोहतास से पटना में उसके ट्रांसफर की कहानी। पिछले एनडीए सरकार में नगर विकास विभाग में वो डेपुटेशन में आया और विशेष आदेश से पटना के पास दानापुर में उसकी पोस्टिंग हो गई। फिलहाल पुलिस का मानना है सिकंदर यादवेंदु इस परीक्षा के अलावा कई अन्य परीक्षाओं में भी प्रश्न पत्र लीक के पीछे का मास्टरमाइंड हो सकता है। पटना से कैमरामैन आशीष और हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए।
और नीट परीक्षा को लेकर देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। 24 लाख छात्रों के भविष्य से जुड़े इस परीक्षा की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में भी चल रही है, तो वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सवाल यह है कि देश में बड़े पैमाने पर यह पेपर लीक हुआ है या फिर जो हुआ है वो सिर्फ एक राज्य और एक जगह विशेष है।
पहले परीक्षा की तैयारी, फिर इम्तिहान और उसके बाद पेपर लीक वाला धोखा। 17-18 साल की उम्र के इन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा कि ये कब तक एक ही इम्तिहान देते रहेंगे, और अगर इनके इम्तिहान को ही सही मान लिया गया तो इस बात की क्या गारंटी कि कोई पेपर लीक वाला बाजी ना मार ले जाए।
सर, रीनीट जो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टूडेंट के लिए बोला गया है एनटीए ने कि 1500 समथिंग स्टूडेंट्स का रीनीट लेंगे, तो वो तो एक पार्शियलिटी हो जाएगा ना। अगर रीनीट लेना भी है तो पूरा कंपाइल्ड 24 लाख स्टूडेंट का लेना चाहिए। लोग गरीब मिडिल लो क्लास फैमिली से आते हैं ऊपर पढ़ने के लिए और यहाँ पे ये सब धांधली हो रही है, तो उन लोग का तो कॉन्फिडेंस लो होगा ना। उन लोग सोचेगा कि हम लोग मतलब हम लोग कैसे क्या करें, हम लोग आगे भविष्य क्या होगा, हम लोग अगर ये आज हो रहा है तो ये अगले साल भी हो सकता है, तो हम लोग कैसे प्रिपरेशन करें। ये सब एनटीए को इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।
फिर भी जब हम अपना साइड तो पूरा मेहनत दे देते हैं, लेकिन जब रिजल्ट नहीं आता है तो हमें डिसअपॉइंटमेंट मिलता है। तो हमारे बच्चों के साइड से भी एनटीए को कुछ सोचना चाहिए था कि हर बच्चा तो प्राइवेट कॉलेज अफोर्ड नहीं कर सकते, और जितना मतलब जैसे अभी हो रहा है कि 70 इतने सारे बच्चे ऑल इंडिया रैंक 1 ला पा रहे, तो ऐसा तो है जिन बच्चों ने जिन्होंने मेहनत किया ऑल इंडिया रैंक उनके लिए तो सही है, लेकिन जिन्होंने रेस मार्किंग से ऑल इंडिया रैंक 1 लाया तो उनके लिए ऑल इंडिया रैंक सही नहीं है। मतलब ये मतलब इसके ऊपर होना चाहिए चेक होना चाहिए इसके ऊपर।
ये हंगामा इसलिए बरपा है कि डॉक्टर बनने का सपना देखने वाले छात्रों की नीट परीक्षा का पर्चा लीक होने का संदेह है। हालांकि बिहार पुलिस की जांच में लग रहा है कि एक ही सेंटर से निकलने वाले टॉपर्स में कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं। इसकी तरफ इशारा बिहार की उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का यह बयान कर रहा है।
हम तो मांग करेंगे कि जो ऐसे लोग हैं इसकी पूरी तहकीकात हो, इनका और कई रिपोर्ट है मैसेज वाला जो यहाँ से भेजा गया है, और हमारे पदाधिकारी सिकंदर कुमार के नाम से बुक करा के अनुराग यादव को ठहरवाया। ये सिकंदर कुमार जो नीट परीक्षा के अभ्यर्थी को परीक्षा में धांधली की जो विषय आई है, यह पूरा मामला है। मैं मांग करूंगा कि इन लोगों के उच्च स्तरीय जांच हो, तो अभी नेता प्रतिपक्ष जवाब दें कि ये प्रीतम कुमार आपके साथ था या नहीं, वो फोन किया था, उनका सारा डिटेल है।
जहाँ भी बीजेपी शासित राज्य है, चाहे बिहार हो, गुजरात हो या हरियाणा हो, इन तीनों जगह जो है पेपर लीक हुआ है, तो हम लोग ही नहीं बल्कि पूरा इंडिया अलायंस जो है इस मुद्दे पर एक साथ है, और हम लोग चाहते हैं कि जो नीट का पेपर जो लीक हुआ है इसको रद्द किया जाए अविलंब।
एनडीटीवी ने नीट पेपर लीक मामले में दो छात्रों की जांच की। हमने पाया कि नीट परीक्षा को लेकर उठ रहे सवालों में कहीं न कहीं कुछ संदेह तो है। पहला मामला गुजरात का है, जहां एक छात्रा को नीट परीक्षा में 720 में से 705 अंक मिले, लेकिन वह छात्रा केमिस्ट्री और फिजिक्स के विषय में 33 अंक भी नहीं ले पाई, वहीं बायोलॉजी में उसे 39 अंक मिले। इस तरह एक छात्रा है राजस्थान के जयपुर की, जो राजस्थान की निवासी है और वहीं एक प्राइवेट कोचिंग संस्थान में पढ़ाई की, लेकिन परीक्षा देने हरियाणा के झज्जर जिले में गई, जहां कई अन्य टॉपर निकले।
बच्चों की जिंदगी का सवाल है, मैं नाम नहीं बता सकता, इसमें से एक बच्चे से मेरी मुलाकात क्यों हुई, फिजिक्स वाला से पढ़ाई करते थे और उनके 720 नंबर आए, तो वो मिलने आ गए 720। मैंने उनका अपने ऐप के ऊपर टेस्ट का स्कोर चेक किया कितने आते थे, तो उनके कभी 630 आते थे, कभी 650, कभी 610। तो मैंने थोड़ी सख्ती से पूछा, यार तेरे तो कभी 720 आए नहीं है हमारे यहाँ, कभी 680 भी नहीं आया, तू बता कैसे आया। तो वो डर गया बच्चा, और हमको देख के डर ही जाता है। तो वो बोला कि सर, मतलब अचानक से देखा अलग, सर सीधा यही पूछ रहे, कहता सर मेरे तो 660-670 आ रहे हैं ओएमआर में। हमने कहा फिर तेरे 720 कैसे आ गए भाई। तुम्हारे जब ओएमआर एनटीए ही जारी करता है, पेपर के बाद एनटीए मेल करता है, ये आपका ओएमआर, इसके देख लो, इसके हिसाब से आपके नंबर इतने बन रहे हैं, मिला लो ताकि पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो जाए। जब उसको वो बच्चा मिला रहा है तो उसके 660 से 670 नंबर आ रहे हैं, और जब एनटीए ने खुद ही उसको मेल करके रिजल्ट भेजा उसमें 720 नंबर आ रहे हैं उस बच्चे के।
नीट परीक्षा के लीक होने का मामला चल ही रहा था कि यूजीसी नेट की परीक्षा को लीक बताकर उसे रद्द कर दिया गया। सवाल है कि क्या अब नीट परीक्षा को भी रद्द किया जाएगा, क्योंकि बिहार पुलिस ने पेपर लीक के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है।
मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, पुख्ता जानकारी आने पर दोषियों को कड़ी से कड़ी उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, एनटीए हो या एनटीए में कोई भी बड़ा व्यक्ति हो, जो इसमें दोषी पाया जाएगा इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इसकी जिम्मेदारी तो मैं लेता ही हूं। देखो, मेरे पास उस जिम्मेदारी से मैं हटने की कोई नैतिक जिम्मेदारी मैं लेता हूं। देश के भविष्य को सुरक्षित करना पड़ेगा, गुणवत्ता को मेंटेन करना पड़ेगा, पारदर्शिता को मेंटेन करना पड़ेगा, लाखों गरीब विद्यार्थियों की मेहनत को सम्मान करना पड़ेगा। बिहार सरकार की और भारत सरकार की कोऑर्डिनेशन व्यवस्थित था, कुछ विसंगति हमारे ध्यान में आई है, इसीलिए मैंने कहा कि सारा प्रक्रिया पूरा होने के बाद इस पूरा चक्र में जो भी जिम्मेदार होगा, जो भी कोई होगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा।
भले ही शिक्षा मंत्री पेपर लीक नहीं होने की बात कर रहे हैं, लेकिन बिहार पुलिस की जांच बार बार पेपर लीक की तरफ इशारा कर रही है। सवाल है कि 34 लाख बच्चों का जो भविष्य अंधकार में है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है, और सबसे बड़ी बात कि इस धांधली में जो शामिल हैं उन पर कार्रवाई कब होगी। कैमरा पर्सन अशोक महाले के साथ मैं अश्विनी कुमार सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।
उधर उत्तर प्रदेश में विवादों में आई पुलिस भर्ती परीक्षा में एक नया अपडेट है। राज्य की योगी सरकार जल्द ही रद्द हुई परीक्षा की दोबारा तैयारी कर रही है। वहीं परीक्षा कराने वाली एजेंसी को भी ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। पुलिस ने चार्जशीट भी अब दाखिल कर दी है।
उत्तर प्रदेश में पुलिस सिपाही भर्ती पेपर लीक में यूपी एसटीएफ ने चार्जशीट दाखिल की है। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती के लिए 17-18 फरवरी को लिखित परीक्षा होनी थी, लेकिन उसका पर्चा पहले से ही लीक हो गया। इसके बाद इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया। इस मामले में 6 मार्च को थाना कंकड़खेड़ा में मुकदमा दर्ज हुआ था। 900 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई है। मास्टरमाइंड रवि अत्री समेत 18 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। 6 राज्यों के 18 आरोपियों पर चार्जशीट दाखिल हुई है। कोर्ट जल्द ही अब इस पर सुनवाई की तारीख तय करेगी। इससे पहले गिरफ्तार आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ में खुलासा हुआ था कि गुरुग्राम के मानेसर और मध्य प्रदेश के रीवा में रिजॉर्ट में कुल 1200 अभ्यर्थियों को लीक हुआ पेपर पढ़ाया गया था। इसके बाद एसटीएफ ने 12 मार्च को हरियाणा के जींद निवासी महेंद्र के अलावा अभिषेक शुक्ला, रोहित पांडे, शिवम गिरी और मानेसर के रिजॉर्ट मालिक सतीश धनखड़ को भी गिरफ्तार किया गया। एसटीएफ की रिपोर्ट आने के बाद सिपाही भर्ती परीक्षा करने वाली कंपनी एजुटेस्ट को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। वहीं खबर है कि एजुटेस्ट का मालिक विनीत आर्य देश छोड़कर भाग चुका है। यूपीएसटीएफ की मेरठ यूनिट ने विनीत आर्य को 4 बार नोटिस भेजा था, लेकिन वो एक बार भी नहीं पेश हुआ। जिस रैकेट को पकड़ा गया सिपाही परीक्षा घोटाले में, उसमें सिपाही, प्रोफेसर, सॉल्वर से लेकर बिजनेसमैन तक शामिल थे।
एक ही आरोपी, एक जगह चार्जशीट में नाम, दूसरी जगह पेपर लीक के शक में हो रही जांच में आ रहा है नाम। वो जेल में बंद है और आरोप लग रहे हैं कि यहीं से वो पेपर लीक भी करवा रहा है। बड़ा सवाल है कि क्या यूपी सिपाही भर्ती घोटाले और नीट के कथित पेपर लीक में एक ही गैंग तो शामिल नहीं है।
क्या सिपाही परीक्षा के पेपर लीक और नीट परीक्षा के कथित पेपर लीक के पीछे एक ही गैंग का हाथ है? ये सवाल इस तस्वीर में दिख रहे शख्स का नाम आने के बाद तेज हो गया है। उसका नाम है रवि अत्री। ये जेल में बंद है, सिपाही भर्ती घोटाले का मुख्य आरोपी है, लेकिन बिहार पुलिस के सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आई है उसमें इसी रवि अत्री का नाम सामने आया है।
दो अलग अलग परीक्षा, अलग अलग पेपर लीक के आरोप, दोनों में एक ही शख्स का नाम सामने आता है। इससे इतना तो जरूर साबित होता है कि पूरा रैकेट बहुत बड़ा है। रवि अत्री जैसे कई और लोग इस रैकेट में शामिल हैं, जो लाखों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। वो इतने मजबूत हैं कि पूरे के पूरे सिस्टम के सुरक्षा तंत्र को आराम से भेद पा रहे हैं। मेहनत से पढ़ाई करने वाले छात्रों की जगह पैसे के दम पर छात्रों को सिपाही से लेकर डॉक्टर बनाने की परीक्षा तक में पास करवाने की गारंटी लेने वाले रवि अत्री जैसे आरोपी से सख्ती से निपटने की जरूरत है। आखिर कैसे ऐसा हो सकता है कि जो रवि अत्री जेल में सिपाही पेपर लीक के आरोप में बंद है, वही रवि अत्री जेल में रहते हुए एक और पेपर लीक की साजिश रच देता है। अगर रवि अत्री ने ऐसा किया है तो बड़ा सवाल है कि वो इतना मजबूत कैसे है कि जेल में रहते हुए पेपर लीक की साजिश रचता है। अगर ये सही है तो ये सिस्टम पर और बड़ा सवाल है।
यूजीसी एनईटी एग्जाम पेपर लीक मामले पर सीबीआई ने मामला दर्ज कर लिया है। शुरुआती जांच में पता चला है कि पेपर को डार्क नेट पर डालकर लीक किया गया। सीबीआई इस मामले में एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और बाकी दूसरी एजेंसियों के संपर्क में है और अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है।
नीट एग्जाम पेपर लीक के बीच नेट एग्जाम के पेपर लीक का मामला भी सामने है। सीबीआई ने गुरुवार को इस मामले में साजिश और धोखाधड़ी की धाराओं के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। सीबीआई को शिक्षा मंत्रालय की तरफ से 20 जून 2024 को एक लिखित शिकायत मिली थी। शिकायत में कहा गया था कि यूजीसी नेट 2024 का एग्जाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने 18 जून 2024 को दो अलग अलग शिफ्ट में कंडक्ट कराया था।
मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, पुख्ता जानकारी आने पर दोषियों को कड़ी से कड़ी उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। एनटीए हो या एनटीए में कोई भी बड़ा व्यक्ति हो, जो इसमें दोषी पाया जाएगा इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
19 जून को यूजीसी को नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिसिस यूनिट की तरफ से इस तरह के इनपुट्स मिले कि ये परीक्षा में गड़बड़ी है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई यूजीसी नेट परीक्षा पेपर लीक के सोर्स का पता लगाने की कोशिश में लगी है। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि पेपर सोमवार को लीक हो गए थे और बाद में एनक्रिप्टेड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बिक्री के लिए डाल दिए गए थे। लीक के सोर्स का पता ना चले इसीलिए संदिग्धों ने प्रश्न पत्रों को डार्क नेट पर डाल दिया था। कई राज्यों के कोचिंग सेंटर भी सीबीआई की जांच के दायरे में हैं। सीबीआई को शक है कि पेपर लीक करने वाले इस सिंडिकेट से कुछ कोचिंग सेंटर भी मिले हुए हैं। सीबीआई एनटीए और अन्य एजेंसियों से अधिक जानकारी मांगेगी।
और नीट को लेकर चल रहा बवाल और एनईटी परीक्षा रद्द होने से एक बार फिर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि 7 सालों में 70 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, जिनका असर 1.5 करोड़ छात्रों और प्रतियोगियों पर पड़ा है। 2019 से लेकर 2024 तक कई अहम परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं और अब नजर उन परीक्षाओं पर जो लीक की वजह से सामने आए और रद्द भी हुए। 17 से 18 फरवरी 2024 को यूपी सिपाही परीक्षा, मार्च 2023 को सहायक इंजीनियर भर्ती परीक्षा, ये तेलंगाना की परीक्षा थी। मार्च 2023 में ही असम बोर्ड की हाई स्कूल परीक्षा में भी लीक का मामला सामने आया। वहीं मार्च 2023 असम सेकेंडरी शिक्षा बोर्ड की हाई स्कूल परीक्षा में भी ऐसे मामले सामने आए। फिर मई 2022 को बीपीएससी प्रीलिम्स बिहार में लीक का मामला सामने आया। उसी साल दिसंबर 2022 को दूसरे ग्रेड के शिक्षकों की भर्ती, जो राजस्थान की परीक्षा है, उसमें भी पेपर लीक का मामला सामने आया था। साल 2021 में जून में सब इंस्पेक्टर पर भर्ती परीक्षा मामला, जो राजस्थान से जुड़ा था, उसमें भी लीक के मामले सामने आए। और उसी साल सितंबर 2021 को नीट में जयपुर से पेपर लीक का मामला सामने आया था। नवंबर साल 2021 में भी यूपीटीएटी परीक्षा में भी लीक का मामला था और दिसंबर 2021 में गुजरात से अधीनस्थ चयन बोर्ड का मामला था। दिसंबर 2021 में ही एई और जेई क्लर्क के लिए माडा की परीक्षा में लीक का मामला सामने आया। फरवरी साल 2020 में यूपी बोर्ड की 12वीं का अंग्रेजी का पर्चा लीक हुआ था। फरवरी 2020 को मणिपुर बोर्ड की 11वीं की परीक्षा में भी पेपर लीक हुए। सितंबर 2020 में एनएलएटी की परीक्षा में पेपर लीक का मामला सामने आया। मार्च 2019 को एमसीए और बीसीए के तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा जो इग्नू की परीक्षा थी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की, उसमें भी लीक का मामला सामने आया। मार्च 2019 को महाराष्ट्र बोर्ड की 10वीं की परीक्षा के पेपर भी लीक हुए थे। तो क्या आपको मालूम है कि डार्क वेब की दुनिया ही पेपर लीक की दुनिया है? यहीं पर परीक्षा के पेपर खरीदे और बेचे जाते हैं। डार्क डीप वेब की दुनिया कैसे काम करती है, इसी की पड़ताल करती हमारी ये खास रिपोर्ट।
जब हम स्पष्ट हो गए कि वो डार्क नेट में जो क्वेश्चन है वो यूजीसी नेट की ओरिजिनल क्वेश्चन के साथ मिलता है, तत्क्षणात हम लोगों ने निर्णय किया इसके ऊपर एक उच्च स्तरीय अनुसंधान और सीबीआई इंक्वायरी हो।
ये बयान है देश के शिक्षा मंत्री का नेट की परीक्षा को रद्द करने के फैसले पर। धर्मेंद्र प्रधान बता रहे हैं कि डार्क नेट पर नेट परीक्षा का पेपर लीक हो गया, जिस वजह से इसे रद्द कर दिया गया। ये वो परीक्षा थी जो 18 जून को आयोजित की गई और 19 जून को इसे रद्द करना पड़ा। अब सीबीआई जांच भी हो रही है। धर्मेंद्र प्रधान ने एक शब्द का इस्तेमाल किया, वो है डार्क नेट। आखिर क्या है ये डार्क नेट जो लगातार खतरा बढ़ा रहा है? डार्क इंटरनेट की दुनिया को समझना जरूरी है। ये वो दुनिया है जो आपको हमें नहीं दिखती, लेकिन दुनिया के तमाम अपराध, जालसाजी, ड्रग्स का कारोबार, सब कुछ इसी डार्क इंटरनेट के जरिए हो रहा है। छियानवे फीसदी इंटरनेट डीप डार्क इंटरनेट का हिस्सा है। हम सिर्फ 4% इंटरनेट कंटेंट का इस्तेमाल करते हैं, जिसे सरफेस वेब कहते हैं। टोर ब्राउजर का इस्तेमाल कर डार्क वेब तक पहुंचा जाता है। डार्क इंटरनेट की दुनिया में ड्रग्स, हथियार, चाइल्ड पॉर्न सहित कई सारे अपराध एक क्लिक दूर हैं। डार्क वेब अनियन रूटिंग तकनीक पर काम करता है। अनियन रूटिंग डार्क वेब को निगरानी से बचाता है। ये डार्क वेब को कई जगहों पर रूट रीरूट कर देता है, जिस वजह से प्रिवेसी बनी रहती है। तो ये कई आईपी एड्रेस को कनेक्ट डिस्कनेक्ट करता है, इस वजह से इसे ट्रैक करना आसान नहीं है। किसी भी तरह की वसूली के लिए बिटकॉइन का इस्तेमाल यहाँ होता है, इस कारण भी पहुँचना मुश्किल होता है।
देखो, डार्क वेब जो है जिसमें आप अक्सर ये चीजें खरीदी और बेची जाती है इसके मार्केट प्लेस पे, वो है जहाँ पे आपको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, जहाँ बिकॉज वहाँ डिटेक्शन नहीं है, वहाँ लॉ एनफोर्समेंट की पहुंच नहीं है, इसीलिए डार्क वेब में बिकॉज जो बेचता है और उसको पकड़ा नहीं जा सकता। दूसरी चीज जो इसकी करेंसी है वो है बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी, तो करेंसी को भी ट्रेस नहीं कर सकते, इसीलिए ये डार्क वेब में क्वेश्चंस की और जितने भी मेडिसिन की, ड्रग्स की इलीगल खरीद फरोख्त के मामले काफी सारे बढ़ चुके हैं भारत के हर एक स्टेट में।
डार्क वेब पर स्कैम ही स्कैम होते हैं, ये धोखाधड़ी का अड्डा है और अब पेपर लीक करने वालों के लिए एक सुरक्षित जगह बनता जा रहा है। क्या इस पर रोक लग सकती है?
देखिए, डार्क वेब जो है उसे जैसे हम स्पाइंग करते हैं, मतलब हमारे यहाँ पे अगर आप देखो कि अपने समाज में काफी सारे स्पाइज होते हैं, जो गुप्त हेयर होते हैं वो होते हैं, वैसे ही भारत सरकार को, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को चाहिए कि अपने गुप्त हेयर, अपने साइबर स्पाइज कि जो प्रत्यारोपण है इनका, वो इस डार्क वेब के ये मार्केट प्लेसेस में होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पुलिस वाले हैं, जो टेक्निकल पुलिस है अपनी, उनके लोग सामान्य खरीदार बनके इस डार्क वेब में इनका प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है, जिससे कि हमें आगे आने वाला खतरा भी मालूम पड़ेगा, बिकॉज डार्क वेब में अक्सर पता चलता है कौन क्या खरीद रहा है, क्यों खरीद रहा है, और ऐसे जो लीक हो गए वो तुरंत हमें पता चलेगा। अभी भी आप देखिए 48 आवर्स में ये सेम क्वेश्चन जब मालूम पड़ा हमें तो हमको ये एग्जाम बंद करनी पड़ी थी, मतलब वापस लेना पड़ा। तो ऐसा जब लीक होता है, क्योंकि डार्क वेब में जो खरीदार होता है उसे पकड़ने के लिए काफी समय लग जाता है, जब तक आप कोई उसे जो खरीदार बेचने वाला है उसके पास एक्चुअल खरीदार नहीं जाता, और फिर हम खरीदार से बात करके उसका चेन ऑफ इवेंट्स नहीं लेते, ट्रायल मतलब जो ट्रेल होता है वो नहीं लेते, तब तक हम इन बेचने वालों को पकड़ नहीं सकते।
पेपर लीक गैंग को खत्म करने के तमाम दावों के बावजूद उसका जाल फैलता जा रहा है। अभी तक इंटरनेट या दूसरे माध्यमों के जरिए पेपर लीक के रैकेट तक पहुंचा जा रहा था, लेकिन डार्क वेब जैसी दुनिया ने मुश्किलें बढ़ाई हैं। उम्मीद करनी चाहिए कि इससे निपटने का रास्ता भी निकलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।
वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद खबरों की खबर जारी है। आप देख रहे हैं खबरों की खबर। नकल या चीटिंग हमारे देश में ही नहीं चीन जैसे देशों में भी कानूनन जुर्म है। चीन का कानून नकल करने के जुर्म में 7 साल की सजा देता है, साथ ही छात्र का विश्वविद्यालय भी कार्रवाई कर सकता है। दरअसल चीन भी परीक्षाओं में नकल की वारदातों से परेशान रहा है, जिसके बाद इस पर वहां सख्त कानून बनाया गया। वैसे चीन ही नहीं, दुनिया के कई देशों में नकल को लेकर काफी सख्त कानून बने हुए हैं। हमारे देश का कानून क्या कहता है, अब इस पर नजर।
पेपर लीक होने का सिलसिला थम नहीं रहा है, छात्रों की मेहनत बेकार हो रही है, रोक को लेकर कोशिशें भी हो रही हैं, लेकिन पेपर लीक करने वाला गिरोह बाज आने को तैयार नहीं है। गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, लेकिन अब तो हालत ये है कि परीक्षा देने के बाद भी डर बना रहता है कि कहीं पेपर तो लीक नहीं हो जाएगा। छात्र कई मुश्किलों का सामना करते हैं, दूसरे शहरों में जाकर परीक्षा देने में खर्च अलग से होता है। बावजूद इसके पेपर लीक होने या पेपर लीक होने के आरोपों से छात्र मायूस हो जाते हैं। नकल को लेकर कानून है, इस कानून के मुताबिक परीक्षा में नकल करने पर 3 साल तक की सजा हो सकती है, वहीं 2,000 रुपए जुर्माना लग सकता है। इसका मकसद परीक्षाओं में पेपर लीक सहित बाकी धांधलियों पर रोक लगाना है।
पेपर लीक का कानून बना था, वो अभी नोटिफाई नहीं हुआ है, जिस वजह से अभी वो प्रोविजन लागू नहीं किए गए हैं, तो वो जिस दिन लागू हो गए उस दिन हम इसका असर देख सकते हैं। इसमें दंड के प्रावधान ये है कि आपको मिनिमम 5 साल से लेकर 10 साल तक की सजा है, 1 करोड़ रुपए जुर्माना है, और साथ में आपको ये नॉन कंपाउंडेबल, नॉन बेलेबल है, कॉग्निजेबल है, और नॉन कंपाउंडेबल है जिसमें ये कंपाउंड नहीं हो सकता है, इसमें सुलह समझौते का कोई प्रावधान नहीं है, और नॉन बेलेबल है कि इसमें जल्दी आपको बेल भी नहीं मिलेगी, मिनिमम 6 मंथ्स तो आपको अंदर रहना ही रहना पड़ेगा जब तक इसमें चार्जशीट नहीं फाइल हो जाती।
एंटी पेपर लीक लॉ का बहुत ज्यादा असर होता फिलहाल नहीं दिख रहा है, इसके आने के बाद भी पेपर लीक के मामले कम नहीं हुए हैं। वहीं ऐसा नहीं है कि पेपर लीक की समस्या सिर्फ राष्ट्रीय है, पड़ोसी देश चीन भी इससे बहुत ज्यादा परेशान है। चीन में नकल को अपराध माना गया है, 7 साल तक की सजा हो सकती है, यूनिवर्सिटी भी छात्रों पर कार्रवाई करती है। चीन में भी लगातार पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। पेपर लीक लाखों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ है, जो भी दोषी हो उसे सख्त सजा देनी चाहिए, जिससे ये संदेश जरूर जाए कि इस तरह पूरे सिस्टम की सिक्योरिटी सिस्टम को पूरी तरह से नकारा साबित कर देना नहीं चलेगा।
तो खबरों की खबर में आज इतना ही, लेकिन एनडीटीवी इंडिया में लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।